और इसी किस्म के दावे इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुबतला हैं, इनका फैसला तो अल्लाह कयामत के रोज करेगा, यानी दुनिया में कोई नहीं समझेगा कौन सच कौन झूठ। तो इसलिए इसको अल्लाह पे डाल दो। इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के नाम पर कायम किए गए इबादत खानों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ये नोट कीजिए, मस्जिदें कब वीरान होती हैं? जब फिरका वारियत होती है। आज मस्जिदें जुमे को तो बहुत आबाद हैं, बाकी दिनों में किधर हैं? वजह क्या है? फिरकों में पट गए लोग, दुनियादारी में पड़ गए, और दीनदार जो है वो फिरकों में पड़े और दुनियादार दुनिया कमाने पे लग गए। कभी फजर पे आके नमाजियों को गिनिए तो जाई, और कभी ईशा की नमाजों में देखिए और जोहर में देखिए। ये आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि हमने मस्जिदों को खाली कर दिया। 5 वक्त की नमाज जो मस्जिद में पढ़ी जाती है, जमात से उसको ऑप्शनल समझ लिया। चंद लोगों का काम के हाँ जाएं वो नमाजें पढ़ें, हम तो कमाएंगे। हालांकि कमाइयां अबू अब्दुलरहमान बिन औफ भी करते थे, हजरत उस्मान भी बहुत बड़े ताजिर थे, अबू बकर सिद्दीक भी ताजिर थे। ये तसव्वुर ही नहीं था कि हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल्फलाह की आवाज आए और मर्दों के कदम मस्जिद की तरफ ना पलटें। यहां चंद लम्हे के लिए सोचते हैं, जमात के वक्त में कितने मर्द हमारे घर से मस्जिद की तरफ जाते हैं? कोई पढ़े भी तो कहते हैं घर में पढ़ ली। हालांकि जमात के साथ मस्जिद में पढ़ने का एक मकसद था, मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप होती है। दिन में 5 बार जब आप लोगों को मिलते हैं तो उनके हाल अहवाल की खबर होती है। तो आइए हम दुआ करते हैं, कम अज कम अपने बच्चों के लिए नियत कर लें। अगर शौहरों को आप अभी नहीं समझते कि आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को 5 वक्त की जमात की आदत डालिए। यह आपका बहुत बड़ा एहसान होगा उम्मत मुस्लिमा पे। आने वाले वक्त में वही बच्चे अल्लाह के दीन की इतफाक के लिए निकलेंगे जो फजर पे मस्जिद में जाते हैं। आज फजर में मस्जिद के लिए नहीं जा रहे, कल अल्लाह ना करे दुश्मन आ जाए तो उसके दिफा के लिए निकलेंगे। तो ये तरबियत का एक तरीका होता है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फरमाया ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम न रखें, अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखरत में सख्त आखरत में बड़ा अजाब है। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। ये जुमला जो है ये दूसरे पारे के शुरू से ताल्लुक रखता है कि किबलों की बहसों में पढ़ते हो, असल ये है कि दीन की हिकमत को समझो। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। अल्लाह ताला पाक इन बातों से, असल हकीकत यह है कि जमीनों आसमान की तमाम मौजूदात इसकी बादशाहत में हैं, सब के सब इसके मती हैं। वह आसमानों और जमीन को पहली बार पैदा करने वाला है और जिस बात का वो फैसला करता है इसके लिए बस ये हुक्म देता है, कुन हो जा, और वो हो जाती। इसको हाईलाइट करें। कभी कोई मुश्किल में फंसे हो, कोई काम अल्लाह से निकलवाना है, अल्लाह से कहें कि अल्लाह सु साहिब कुन फया कुन है, तू मेरी इस बीमारी पे, मेरे इस बच्चे की बीमारी पे सेहत का कुन कह दे, इस गुर्बत को इस अफलास को खत्म कर दे। देखिए जब अल्लाह की कुदरत का आपको यकीन होता है ना, तो आपका हाल ऐसा है कि जैसे रिमोट कंट्रोल आपकी जेब में, जब चलाया चीज चला लेंगे। अल्लाह के साथ इतना गहरा ताल्लुक रखिए कि अल्लाह की कुदरतों के ऊपर यकीन रखते हुए नामुमकिनात को मुमकिन में बदलने की का यकीन आपको होना चाहिए। फिर फरमाया नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाता। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, ऐसी ही बातें इनसे पहले के लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियतें एक ही जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमायाँ कर चुके हैं, इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्मे हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं। अगली आयत को हाईलाइट कीजिए, मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ के गुजर जाऊं तो मेरा ख्याल है कि यह आयत आपको समझ आ जाएगी। वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिय मिल्लतहुम, यहूद और नसारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे, तुमसे कौन, मुसलमानों से, जब तक तुम इनके तरीके पर न चलने लग जाओ। दिस इज द ओनली थिंग दे विल बी प्लीज विद यू, कि तुम मुसलमान ना रहो। तो क्या कहना है, साफ कह दो क्या कि हुदल्लाही हुवल हुदा, कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बता दिया। वरना अगर इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ने का हक है। दुआ कीजिए अल्लाह में इस किताब को पढ़ने का हक अदा करने वाला बना दे। وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تیسری بار، اب یہاں وہ بریکٹ کلوز ہو رہی ہے جو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آیت 40 سے، بنی اسرائیل کے 10 رکوع ہم نے پڑھے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ آج کس کو دی ہوئی؟ اللہ نے امت مسلمہ کو۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ کیا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا ڈکلائن کب ہوا؟ جب ان کے اندر سے آخرت کے معاملے میں صحیح چیزیں نکل کر خوش فہمیاں رہ گئیں۔ آج بھی یہی کہانی ہے۔ ہم مسلمانوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم آخرت کو صحیح طرح نہیں سمجھے۔ یہاں پہ ایک کردار پورا ہوا۔ پھر دہرا دیتی ہوں، آدم اور ابلیس کے قصے میں دو چیزیں تھیں۔ آدم سے خطا ہوئی، توبہ کی، ندامت تھی۔ ابلیس سے خطا ہوئی، اکڑ گیا، تکبر کیا۔ ابھی تک جو اس رویہ ہم نے پڑھا یہ ابلیسی رویہ تھا کہ جب غلطی ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے۔ اب اگلے حصے میں ایک ماننے والا، ایک مسلم کردار، یعنی میرے اور آپ کے لیے اب اس پارے میں سے رول ماڈل، ہر پارے میں سے ہم ایک رول ماڈل لیں گے ایز امت مسلمہ انشاءاللہ۔ پہلے پارے کے ہیرو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئیے دیکھتے ہیں اللہ ان کا کتنے پیار سے ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی شخصیت پہ ہم بہت کچھ آگے پڑھیں گے، اور اللہ کے کلام میں جو ہے اس کو پڑھنا مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے کہ ہم کچھ کہیں۔ اس لیے ان کے اوپر ہم باتیں اگلے سبق میں کریں گے جب ان کا ذکر آئے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورے اتر گئے۔ دعا کریے اللہ جب تو ہمیں آزمائے تو ہم بھی پورے اتریں، اللہ جو کرنے کو کہے ہم اس کو کر لیں، اللہ تعالیٰ جس سے تو روکے ہم اس سے رک جائیں۔ تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ہائی لائٹ کریں، اللہ کب لیڈر بنائے گا امت مسلمہ کو؟ جب اس حضرت ابراہیم کی سنت میں یہ بھی اللہ کی ہر بات کو ماننے لگ جائیں گے۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، یعنی نبوت یا جنت وراثت میں نہیں ملتی، یہ اعمال سے کمانی پڑتی ہے۔ اب جب اللہ نے ابراہیم کو چنا تو کیا کیا؟ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا؟ نہیں، اللہ جن کو چنتا ہے ان سے اپنے گھر بنواتا ہے، اور اپنے گھروں کو آباد کرواتا ہے، اور اپنے گھروں کو صاف کراتا ہے۔ سارے والنٹیئر جہاں سے بھی سن رہے ہیں، اینی ویئر، وہ ان آیتوں کو پڑھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اس جاب سے کبھی ہٹانا نہ، ہم تیرے دین کی خدمت کرتے ہی رہیں چاہے ہمیں باہر کھڑے ہو کر جوتوں کو سیدھا کرنا پڑے۔ یہ بہت آنر ہے۔ دیکھیے بڑی کمپنی میں جاب مل جانا ہی بڑی بات ہے، کیا پوسٹ ہے ہو کیئرس؟ آپ نام تو لے سکتے ہیں نا کہ میں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ تو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ فرمایا یاد کرو جب ابراہیم جی، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ اللہ آپ کو عمرے پہ لے کے جائے، حج پہ لے کے جائے۔ جب مقام ابراہیم کے پاس کھڑی ہوتی نا تو میرے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تو اپنے راستوں میں کھڑے ہونے والوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تو نشانیاں بنا دیتا ہے۔ آج میں اور آپ اگر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے پاس بہت جگہ ہے، لیکن آج جب ہم استقامت چھوڑ کر تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑک جاتے ہیں تو نہ جانے ہمارا اللہ کے پاس کیا مقام ہوتا ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ اب ذرا ابراہیم کی دعاؤں کی روح پہ آج امت مسلمہ کو کیا دعائیں مانگنی ہیں اس کو دہرائیے۔ ایک بک ہے فائنی قریب کے نام کی، آئی ڈونٹ نو سٹال پہ ہے کہ نہیں، اس میں ترتیب کے ساتھ دعائیں ہیں، یعنی جس ترتیب سے قرآن پاک میں آئی ہیں ویسے ہی ہیں۔ تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ ہر پارے کی دعائیں اس پارے کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ شروع میں آ کے ادھر اگر مل کے پڑھ لیں، گھر میں موقع ملے تو انشاءاللہ اس پورے دورے قرآن کے اینڈ پہ آپ کو پورے قرآن کی دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ اگلی دعا جو آ رہی ہے یہ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ और ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में इसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सामान तो इसे भी दूंगा, मगर आखिरकार इसे अजाब जहन्नुम की तरफ घसीटूंगा और वह बदतरीन ठिकाना है। इब्राहिम ने मोहब्बत की बात की थी, अल्लाह ने अदल की बात की कि दुनिया उनको भी दूंगा जो मेहनत करेंगे, काफिर हैं या मुसलमान, लेकिन आखरत उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा और जो अल्लाह पर ईमान रखेगा। वह इस जरफा इब्राहिम अल-कवाइद मिन अल-बैती व इस्माइल, और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे। इमेजिन कीजिए, एक मिस्त्री है और एक मजदूर और दोनों बाप बेटा हैं, और घर किसका बन रहा है? अल्लाह का। तो दुआ करते जाते थे, इतना बड़ा काम अल्लाह ने उनसे ले लिया, कोई तकब्बुर नहीं, कोई फख्र नहीं। ये नहीं कहा एक छोटी सी हमारे नाम की वहां स्लाइड ही लगा दो, कोई नेम प्लेट लगा दो, मेड बाय इस्माइल, मेड बाय इसमें नहीं, रब बना तकब्बल मिन्ना, कह रब हमसे ये खिदमत कबूल कर ले। तो सब की सुनने और जानने वाला है, असल चीज कबूलियत है, काबिलियत नहीं है। आप कितने टैलेंटेड क्यों ना हो और दूसरा आपको कबूल ही ना करे तो किस काम की बात है। दुआ करिए अल्लाह हमारी ये टूटी फूटी कोशिशें कबूल कर ले, और ये खिदमत हमारी आखिरी खिदमत ना हो दीन के नाम पे, बल्कि ऐ रब हम दोनों को अपना मुस्लिम और मती फरमान बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा। ये अब आपके लिए दुआएं होने लगी हैं, जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बता। ये क्या बात है, घर बना लिया, इबादत के तरीके भी खुद ही वजा कर लेते। यहां से नोट कीजिएगा, इब्राहिम को यह पता था कि इबादत के तरीके बनाए नहीं जाते, माने जाते हैं। फैब्रिकेटेड इबादत को बिदत कहते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का एक और बहुत बड़ा नासूर है, सुन्नतों को पीछे डालकर, फराइज को पीछे करके मनपसंद काम की नेकियां करते हैं जो सहाबा ने ना की, अल्लाह के नबी ने ना की, तो इबादत के तरीके माने जाते हैं। इब्राहिम को यह बात अच्छी तरह पता थी, और साथ ही फरमा दिया, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा मुआफ करने वाला रहम फरमाने वाला है। और ऐ रब इन लोगों को खुद सॉरी और ऐ रब इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी जिंदगियां संवारे। आज भी यही करना है वल्लाह, आज उम्मत मुस्लिमा को अगर हम सामने लाना चाहते हैं तो किताब के साथ इस तरह का गहरा ताल्लुक कि किताब की आयतें पढ़नी आ जाएं, सुननी आ जाएं, इसकी तफसीर समझ आ जाए और इसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना आ जाए। अल्लाह तो हमें इसकी तौफीक अता फरमा, और तू बहुत ही कुदरत वाला और हकीम है। अब आप देखिए कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें अल्लाह ताला मेरे और आपके सामने लाता है, और अगर हम इन सारी बातों को पढ़ें और कि हाय इब्राहिम कितने अच्छे थे, हाय इब्राहिम कितने फखर शान वाले थे, तो बात काफ़ी होगी। बात इसके बाद हमें क्या कहना है कि अल्लाह जैसे इब्राहिम थे वैसे तो हमें बना। 13 आप देखिए कि तकरीबन 4000 साल पहले की शख्सियत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन आज भी इनका जिक्र आता है तो ऐसे लगता है आज के दौर की शख्सियत है, क्योंकि जितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने उनको दी उतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें की। दुआ कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा इन सारी आजमाइशों में पूरी उतरे, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी हम सब उसको लेकर चलें। अब ये कि हमारा वक्त जहाँ पूरा हुआ है, कुछ चीज़ें आपको पता है कि अभी शुरू में सेटलमेंट्स हैं, आप अगर सदका करेंगे तो फिर आज हम इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो कल आगे लेकर, तो फिर कल के पारे को थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल से अब हमारा एक पारा होगा। अभी शुरू में आप छोटे थे, आपको हम थोड़ा थोड़ा रेडी कर रहे थे, लेकिन यह है कि डेली गोल चुके एक पारे का है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल शुरू करूँगी, लेकिन आप में से जो साथी थोड़ा सा मतलब लेट आते हैं या जैसे भी हुआ, कोशिश आज तो मेरा हाल है सभी आप लोग जो इस रूम में वो तो सभी थे, और उनको बताइए 10:15 पे यहाँ पिछला रिकैप शुरू करेंगे आज के पारे का। कल हम इंशाल्लाह अगले हिस्से पे जाएंगे, और हमारी जो आज की रेसिपी है वो हरीसा बनाने की तरकीब है। सुना है नाम हरीसे की है। अब ये कि इधर मैं एक छोटी सी बात कर देती हूँ कि इस हिस्से की अब हम तिलावत सुनेंगे, लेकिन आप में से जो लोग जाना चाहें बड़ी खुशी से जा सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए ये काम रख लीजिए कि आप इस हिस्से की तिलावत घर में खुद सुनकर या अपनी गाड़ी में अगर सीडी या रिकॉर्डिंग कुछ भी है या फ़ोन से सुन सकते हैं, सुने। कल से इंशाल्लाह मोर और चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे वक्त में बरकत दे और हमें इसकी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर जी। ये कुछ सिस्टर्स के लिए दुआ की बात है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी दुआएं हमने सुनी, तो हम अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे साथियों में जितने भी लोग परेशान हैं, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, उनको दूर फरमा। ख़ास तौर पर ये जिनकी दुआओं की दरख्वास्त आई है, अल्लाह ताला को इनके नाम भी पता है और अल्लाह ताला को इनकी तकलीफ़ें पता है। अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत दे, उनके बच्चों को सेहत दे, हमारे इन सुनने वाले ऑनलाइन और डिफरेंट जगहों पर जो लोग बैठे हैं, कनेटिकट में, ओक्लाहोमा में और जहाँ भी, मैं नहीं भी जानती, अल्लाह ताला उन सबको भी हमारी इन दुआओं में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने वाला बना दे। इसी सोच के साथ सुनते हैं हम तिलावत। अब थोड़ी सी हम स्लो चला रहे हैं ताकि आपको एक ट्रायल दे सके जी। ऑनलाइन वाले अगर होल्ड करना चाहें माइक तो ले लें, नहीं तो हमारे साथ सुनते रहें जी। जहां तक हमने सुना था उससे आगे आयत नंबर बोलिए शाहीन, 79 से। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, शुरू करते हैं। जितनी ऊंची आवाज़ से आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा और आपका हिस्सा भी बीच में शामिल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं मिलके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। गौर कर लें, कुछ ना कुछ करें। जो एक कार्ड पढ़ नहीं सकते तो सुने, सुन नहीं सकते तो गौर करें। यानी मोमिन के पास एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। शुरू करते हैं।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَوْحَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولكن جاءكم كتاب من عند الله مصدقا لما معكم مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بينهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاق بني ورفعنا فوقكم الطور ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدكم لو عمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
Oh, تجلسك رفيقا
وسعى في حرابها أولئك ما كان من أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
یہاں تک یہ بتانا جی وہاں تک چلا
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا
إنك أنت السميع العليم
ربنا
کیسا لگا آپ کو؟ تھوڑا زیادہ سلو تو نہیں ہو گیا تھا؟ چلیے اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ اس کو مزید کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے. کل اسی جگہ سے شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.